एहेस्केल अध्याय तीन। एहेस्केल अध्याय तीन पद एक। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इसराइल के घराने से बातें कर। दूसरे शब्दों में उसे निगल जा और जाकर निकाल दे। देखिए, यही सेवकाई है। आप परमेश्वर के वचन को निगल जाते हैं, तदोपरांत लोगों को दे देते हैं। आप इसे तब तक पढ़ते रहते हैं जब तक कि वो आपके जीवन का एक अभिन्न अंग नहीं बन जाती है। इसके बाद आप उसे अन्य लोगों को खिलाते हैं। एहेस्केल अध्याय तीन पद दो से लेकर पांच तक। सो मैंने मुंह खोला और उसने वो पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। सो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वो मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इसराइल के घराने के पास जाकर उनको मेरा वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली व कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है। वो इसराइल के वंशजों में भेजा गया था, ना कि अजनबी या परदेशियों में, जिनकी भाषा बोलने और समझने में उसे कठिनाई हो। एहेस्केल अध्याय तीन पद पांच और छह। परंतु इसराइल ही के घराने के पास भेजा जाता है। अनोखी बोली वो कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास, जो तेरी बात समझ ना सके, तू नहीं भेजा जाता। निस्संदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरी सुनते। यदि मैं तुझे अन्य जातियों में भेजता तो वे तेरी बात मानते, परंतु मैं तुझे इसराइल के घराने में भेज रहा हूं। एहेस्केल अध्याय तीन पद सात से लेकर नौ तक। परंतु इसराइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इसराइल का सारा घराना ठीठ और कठोर मन का है। देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ठीड कर देता हूं। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूं, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। सो तू उनसे ना डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे बलवाई घराने के हैं। वे तुझे घूरेंगे परंतु तेरा मन कच्चा न हो, अर्थात घबराना नहीं, मेरा वचन कहना। एहेस्केल अध्याय तीन पद दस। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूं वे सब हृदय में रख और कानों से सुना। इसलिए कानों से सुनकर मेरे वचन हृदय में रच ले, उन्हें अपने जीवन का अंग बना ले। एहेस्केल अध्याय तीन पद ग्यारह और बारह। और उन बंधुओं के पास जाकर जो तेरे जाति भाई है, उनसे बातें करना और कहना कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, चाहे वे सुने या ना सुने। तब आत्मा ने मुझे उठाया। अब वो आत्मा में उठाया जाता है। एहेस्केल अध्याय तीन पद बारह में आगे लिखा है, और मैंने अपने पीछे बड़ी गड़गड़ाहट के साथ एक बड़ा शब्द सुना, जैसे कि जल प्रपात से पानी गिर रहा हो। एहेस्केल अध्याय तीन पद बारह और तेरह। कि यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है, और उसके साथ ही उन जीवधारियों के पंखों का शब्द जो एक दूसरे से लगते थे, और उनके संग के पहियों का शब्द, और एक बड़ी ही गड़गड़ाहट सुन पड़ी। उसको ये अनुभव प्राप्त हुआ, जैसा कि लोग कहते हैं कि वे उड़न तश्तरी में उठा लिए गए थे, इसी प्रकार एहेस्केल को करूबों का अनुभव प्राप्त हुआ। एहेस्केल अध्याय 3:15। और मैं उन बंधुओं के पास आया जो कबार नदी के तीर पर तेलाबीब में रहते थे, और वहां मैं 7 दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा रहा। वो पूर्व दिशा में तेलाबीब के कैदियों के पास आया है, और वहां भी हालत देखकर वो हक्का बक्का रह गया। अतः वो आश्चर्यचकित होकर 7 दिन तक मुक बना बैठा रहा। आपको ध्यान होगा कि आयुब की दुर्दशा देखकर उसके मित्र 7 दिन तक कुछ नहीं बोल पाए थे, तब आयुब ने ही मौन तोड़ा था। इसी प्रकार उनकी दशा देखकर एहेस्केल 7 दिन तक चुप बैठा रहा। एहेस्केल अध्याय 3:16-17। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इसराइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। अब परमेश्वर उसे सेवकाई में नियुक्त करता है। मैंने तुझे इसराइल के घराने के लिए पैरुआ नियुक्त किया है। तेरा 2 उत्तरदायित्व है, एक मेरे वचन को सुन और दूसरा उन्हें सुना दे। परमेश्वर की यही रीति है कि उसका वचन पहले ध्यान से सुना जाए फिर सुनाया जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं हैं, क्योंकि उनके कान परमेश्वर की वाणी के लिए बंद है। अतः परमेश्वर इन लोगों तक पहुंचाने के लिए उन लोगों का प्रयोग करता है जो परमेश्वर की संगति में रहते हैं। इस संसार में रहने का आपका प्रमुख उद्देश्य यही है। परमेश्वर ने आपके लिए एक काम रखा है कि आप इस संसार में आवश्यकताग्रस्त लोगों को छुए। परमेश्वर उन लोगों को जो उसके संबंध में है ऐसे लोगों को छूने में प्रयोग करता है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। एहेस्केल अध्याय 3:18-19। जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वो सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वो दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वो अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वो तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। अब देख, मैंने तुझे पैरुआ ठहराया है, और तेरा काम है मेरा वचन सुनना और उसे बोलना। यदि मैं दुष्ट के लिए कहूं तो मर जाएगा, तो उन्हें चिता देना, और यदि वे सुनकर मन फिरा ले तो भला होगा, वे जीवित रहेंगे। यदि वे ना सुने तो तेरी आत्मा तो मुक्त हो जाएगी, परंतु यदि तू उन्हें चेतावनी ना दे और वे मर जाए तो उनका जिम्मेदार तू ठहरेगा, उनका खून तुझ पर होगा। तुझ पर खून होने का अर्थ क्या है? परमेश्वर की सेवकाई में मेरे विफल होने का अर्थ क्या है? यदि परमेश्वर मुझे कहे कि जाकर मैं इन्हें सतर्क करूं कि वे अपने बुरे कामों से मन फिराए, अन्यथा वे मर जाएंगे क्योंकि परमेश्वर उन्हें दंड देने वाला है। यदि मैं आदेश के पालन में विफल हो जाता हूं और वे परमेश्वर से दंड पाकर नाश हो जाते हैं, तो उनका खून मुझ पर है, अर्थात परमेश्वर उनकी मृत्यु का जिम्मेदार मुझे ठहराएगा और मुझे विश्वास योग्यता का प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। परमेश्वर ने एहेस्केल से ये नहीं कहा कि वो जाकर उन्हें मन फिराव के लिए मना ले और ना ही कहा कि वह उनसे विवाद करे, परंतु सीधा और सरल कहा कि जाकर उसकी चेतावनी की घोषणा कर दे। हम यही सोचते हैं कि हमें लोगों से स्वीकार करवाना है कि वे मसीह को ग्रहण करें। नहीं, परमेश्वर ने हमें लोगों का मन परिवर्तन करने के लिए नहीं बुलाया है, क्योंकि हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है। मैंने तुझे बुलाया है, उसने कहा, हम लोगों को चेतावनी दे, उसने कहा, तू उन्हें चिता दे, तुम्हें ये आदेश है, तुम्हारी जवाबदेही है। एहेस्केल अध्याय 3:20। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं तो वो मर जाएगा, अर्थात यदि कोई पथभ्रष्ट व्यक्ति गलत मार्ग पर चल रहा है और यदि परमेश्वर उसे रोकने के लिए मार्ग में बाधा खड़ी कर दे तो वो ठोकर खाकर नरक में गिर जाएगा। एहेस्केल अध्याय 3:20 में आगे लिखा है, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया इसलिए वो अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धर्म के काम उसने किए हो उनकी सुधि ना ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। इसका अनंत सुरक्षा से क्या संबंध है? सच तो यह है कि कुछ भी नहीं। ध्यान रखें कि हम पुराने नियम का अध्ययन कर रहे हैं। पुराने नियम में धार्मिकता केवल व्यवस्था पालन में थी, परंतु नए नियम में जिस धार्मिकता का हमें श्रेय प्राप्त होता है वो हमें मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है। अतः यहां आप एक अलग धार्मिकता के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरी बात है संबंध। अनेक लोग अंगीकार तो करते हैं कि वे मसीह के हैं, परंतु उनका जीवन सांसारिक होता है। जहां तक मेरा विचार है, मैं आपके अंगीकार की परवाह नहीं करता हूं। यूहन्ना स्पष्ट कहता है कि बहुत से ऐसे हैं जो झूठा अंगीकार करते हैं। वो जो कहता है कि ज्योति में है और अंधकार में चलता है वो झूठा है, वो सत्य को नहीं जानता। वो जो कहता है कि उसने पाप नहीं किया अपने आप को धोखा करता है, उसमें परमेश्वर का सत्य नहीं है। मनुष्य जो भी कहे उसके कार्य उसके अनुकूल हो। यदि मैं कहूं कि मैं ज्योति में हूं और सांसारिक जीवन व्यतीत करूं तो मैं अपने आप को धोखा देता हूं, मुझ में सत्य का वास नहीं है। आज बहुत लोग धोखे में हैं क्योंकि वे शब्दों से विश्वास का अंगीकार करते हैं परंतु मन फिराव के योग्य फल नहीं दिखाते। वे अभी संसार में जीते हैं और उसके पीछे भागते हैं। परमेश्वर का वचन हमें शारीरिक लालसाओं के प्रति चेतावनी देता है। पौलुस कहता है गलातियों अध्याय 5:19-21, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पौलुस कहता है यदि आप शारीरिक लालसाओं में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और पाप का जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो परमेश्वर के अनुकूल नहीं है, तो मैंने आपके अंगीकार की चिंता करता हूं और नहीं आपके सदाचारी कामों की। आपकी जीवन शैली मसीह यीशु का और उस पर विश्वास का खंडन करती है और आप अपने पापों में ही नाश होंगे। मसीह यीशु में विश्वास रखने से ही परमेश्वर हमें धार्मिकता प्रदान करता है। यहां परमेश्वर एहेस्केल को भेजता है कि वो जाकर इसराइल के घराने को परमेश्वर के सत्य का वचन दे। एहेस्केल, तुझे यही करना है और ऐसा करने से तू अपनी आत्मा को मुक्त करा लेगा। मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते उसके वचन के और मेरी समझ में जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके आधार पर कहता हूं कि यदि आप शारीरिक लालसाओं का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आत्मा का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, अर्थात आत्मा के मार्गदर्शन में नहीं है कि आत्मा की बातों को खोजें, तो आपका अंगीकार अर्थहीन है। आपका जीवन यीशु का इनकार कर रहा है। आज भी अनेक लोग झूठे भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा मूर्ख बनाए जा रहे हैं कि केवल चर्च में दान देने से सब ठीक रहेगा और फिर जैसे वे चाहे वैसा जीवन व्यतीत करें। उन पर विश्वास नहीं करना। एहेस्केल अध्याय 3:22। फिर यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई। यहां वो तीसरी बार इस उक्ति का प्रयोग करता है। एहेस्केल अध्याय 3:22-23। और उसने मुझसे कहा, उठकर मैदान में जा और वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। तब मैं उठकर मैदान में गया। वो कबार नदी के तीर से उठकर मैदान में चला गया। वहां तक आने में उसको ये अलौकिक वाहन प्राप्त हुआ था, परंतु अब वो पैदल चलकर गया। एहेस्केल अध्याय 3:23। तब मैं उठकर मैदान में गया और वहां क्या देखा कि यहोवा का प्रताप जैसे मुझे कबार नदी के तीर पर वैसे ही यहां भी दिखाई पड़ता है और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। परमेश्वर किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, वो हर जगह है। वो मैदान में है तथा नदी में है। कभी कभी वो निर्देश देकर आपको एक तरीके से काम करने को कहता है, परंतु दूसरी बार उसका तरीका कुछ और होता है। हमारी समस्या ये है कि हम परमेश्वर को किसी एक तरीके में सीमित कर देना चाहते हैं। पहले परमेश्वर ने ऐसा ही किया था। हम सोचते हैं परमेश्वर वैसे ही काम करेगा जैसे उसने पहले किया था। ये हमारी बड़ी भूल है कि हम सोचे परमेश्वर का एक ही तरीका या एक ही कार्य प्रणाली है। हम मनुष्य सदैव एक ही विधि के पीछे पड़ जाते हैं। उन्होंने पहले वैसा ही काम किया था। हमारे पूर्वजों ने इसी रीति से किया था और हम लकीर के फकीर या रूढ़िवादी बन जाते हैं। कलीसिया की भी यही एक समस्या है। वो भी लकीर की फकीर बन गई और इस कारण उसका संदेश लोगों को प्रभावित नहीं करता है। एहेस्केल अध्याय 3:24। तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। देखिए, आत्मा उसे बार बार पकड़कर खड़ा कर रहा है। वो हर बार परमेश्वर की महिमा को देखता है तो मुंह के बल गिर पड़ता है और आत्मा उसे उठाकर पैरों पर खड़ा करता है। एहेस्केल अध्याय 3:24-25। फिर वो मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठा रह, और हे मनुष्य के संतान, देख वे लोग तुझे रस्सियों से जकड़कर बांध रखेंगे और तू निकलकर उनके बीच जाने नहीं पाएगा। अपने घर में द्वार बंद करके बैठ जा, वे तुझे रस्सियों से बांध देंगे। एहेस्केल अध्याय 3:26। और मैं तेरी जीभ तेरे तालू से लगाऊंगा जिससे तू मौन रहकर उनका डांटने वाला ना हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। मैं तुझे गूंगा बना दूंगा कि तू उनसे बातें ना कर पाए। परमेश्वर ने उसे भेजा था कि वो इसराइल के घराने को परमेश्वर का संदेश सुनाए, परंतु अब कुछ समय के लिए वो उसे मौन कर देता है। एहेस्केल अध्याय 3:27। परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं तब तब तेरे मुंह को खोलूंगा और तू उनसे ऐसा कहना कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, जो सुनता है वो सुन ले। याद कीजिए, नए नियम में यीशु ने बार बार कहा था, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर ने एहेस्केल को ऐसा कहा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एहेस्केल कुछ भी अपनी ओर से कहे। वो चाहता था कि एहेस्केल परमेश्वर के वचन की प्रतीक्षा करे और जब परमेश्वर बोले तब वो भी बोले। अतः परमेश्वर ने उसे गूंगा बना दिया। मैं कई बार सोचता हूं कि परमेश्वर मुझे भी कभी कभी गूंगा बना दे, क्योंकि कुछ ऐसी बातें मैं बोल चुका हूं जिन्हें मैं वापस लेना चाहता हूं। एहेस्केल अध्याय 3 पद 27 में आगे लिखा है, और जो नहीं सुनता वो ना सुने। यदि वे सुनना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। एहेस्केल अध्याय 3 पद 27 के अंत में लिखा है, वे तो बलवा करने वाले घराने के है ही, इसलिए उसकी चिंता किए बिना उन्हें मेरा वचन सुना दे।